जो है वो कम नहीं हुई है, लेकिन जो लोअर हुई है प्राइसेस वो सेल फोन सर्विसेज की हुई है।
क्या बात है जी?
क्या बात है जी? और सारी
फोन लो जी, फोन लो जी।
नहीं नहीं सारी रात बिलवर्ड्स नाल हुन गल करो।
हाँ जी,
है जी, सारी रात, क्योंकि पैसे कम हो गए। और वो कहते हैं जी कि अर्लियर दिस मंथ बैंक ऑफ कनाडा जो था उसने चूंकि अपना ओवरनाइट लेंडिंग रेट 5% पे रखा था थर्ड टाइम, तो कहते हैं क्योंकि बैंक ऑफ कनाडा बड़ा एनकरेज हो गया है कि इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ रही है और इकोनॉमी सही हो रही है।
अच्छा,
हाँ, ये नई न्यूज है, आपको नहीं पता?
आई डिडंट नो दैट। मुझे क्या मालूम है जी? वो
आपको क्या मालूम? मैंने अभी तक सुनाई नहीं थी ये खबर, तो आपको कैसे पता चली थी?
वो है ना कि वो ग्रोसरी की प्राइस बढ़ गई, मुझे क्या मालूम?
आपको क्या मालूम?
और सारी चीजों की प्राइसेस, हर चीज की, इंक्लूडिंग गैस, बढ़ गई है, मुझे क्या मालूम?
आपको क्या मालूम? हाँ हाँ, तो ये आज स्टेट्स कनाडा ने आपको बताया।
पैसा थोड़ी निकल रहा है, तो गवर्नमेंट दे रही है मुझे पैसा, ये ले भाई तू खर्च कर ले।
एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जनाब, जो बिल्कुल ही शट डाउन कर दिया था स्कारब्रो आरटी, उसको अब उसको और उसका इक्विपमेंट जो है सारा डेट्रॉइट की एक कंपनी जो है, कैन यू इमेजिन, दे आर बाइंग इट फ्रॉम
टीटी। दिस इज नॉट डेट्रॉइट पाकिस्तान, दिस इज डेट्रॉइट यूएसए।
यस, वो ये टीटीसी से खरीद रहे हैं और उसको उन्होंने अपना नाम दिया, जो उनकी ट्रांजिट सिस्टम है पीपल मूवर, वो ले रहे हैं। डेट्रॉइट ट्रांसपोर्ट जो है उसने एक मीटिंग की है कनाडा की टीडीसी के साथ, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो टीडीसी के हैं उन्होंने अब ग्रीन सिग्नल दिया है उनको। उन्होंने कहा जी हाँ, ये बिल्कुल बेच दो, हमारे पास तो यानी बिल्कुल ही ये जंक होके बेकार पड़ा है, तो इनको आप बेच दो। तो ये वो कहते हैं जी कि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक 6 स्टॉप ट्रांजिट लाइन थी, जिसको के ओपन किया गया था 1985 में, और बहुत अरसे से इसको कह रहे थे एक्सपर्ट्स कि ये 25 ईयर्स तक इसने रन कर लिया है और अब ये रिटायरमेंट इसकी हो जानी चाहिए थी 10 साल पहले ही, लेकिन फिर भी इस पे काम चल रहा था। बहरहाल जी, इसको फिर जिस वक्त इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आई, तो फिर इसको जो है वो शट डाउन कर दिया गया था, बिल्कुल क्लोज कर दिया गया था इस समर के अंदर। तो वो कहते हैं जी कि ये सिटी के स्टाफ ने तो 2006 में ही कहा था ऐसे करने को, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और अब चूंकि ये जो 28 कार्स का ये जो एजिंग फ्लीट है स्कारब्रो आरटी का, तो ये अब डेट्रॉइट जो है वो अमरीका से खरीद रहा है, और जो है बड़ी ये हैरत हुई मुझे सुन के कि अगर ये इधर काम नहीं कर रही तो अमेरिका में कैसे काम करेगी। बहरहाल कुछ करेंगे, शायद वो जुगाड़ लगाएंगे। जीटीए के अंदर आज दो स्कूल बोर्ड्स जो थे उन्होंने आज अनाउंस किया था कि स्कूल की बसें जो हैं आज बच्चों को नहीं उठाएंगी, क्योंकि बेतहाशा जो है वो बर्फ गिरी है। एनवायरमेंट कनाडा ने वार्न किया था कि ट्रोनो और हैमिल्टन में 4 to 8 सेंटीमीटर तक स्नो आ सकती है, और लोकल फ्लरीज जो है वो भी होंगी 10 to 20 सेंटीमीटर तक बैरी के पास, और विंड गस्ट होंगे 70 किलोमीटर पर आवर के पास, तो विजिबिलिटी कम होगी, रोड्स आईसी होंगे। इसकी वजह से स्कूल तो ओपन थे लेकिन बसेस जो थी जोन 1 से लेकर 3 तक रन नहीं कर रही थी हैमिल्टन में, और इसके अलावा जो डर्हम कैथोलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड है वहां पे भी बसें आज कैंसिल की गई थी जोन्स 1, 2 और 3 के अंदर, और जो है लेकिन हैमिल्टन के जो जोन 4 था उसमें बसें जो थी वो ऑपरेशनल थी। तो आज पेरेंट्स को काफी प्रॉब्लम रही, बच्चों को पहले छोड़ना पड़ा और फिर उसके बाद उनको लेना पड़ा, बहुत सारे बच्चे आज घर पे भी रहे। WHO ने अब कहा है जी कि एक नया वायरस ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आया है, विच इज JN.1 कोरोना वायरस स्ट्रेन। इसकी जो जानकारी है आज WHO के जो चीफ हैं उन्होंने गब्रियासिस साहब उन्होंने आज दी है। उन्होंने कहा वैसे तो पब्लिक को कोई इसका हेल्थ रिस्क नहीं है, क्योंकि एक तो लोगों ने जो हैं वो XBB.1.5 बूस्टर वैक्सीन भी लगाए हुए हैं, और जो है ये इतना ज्यादा फैलता भी नहीं है। ये जो वेरिएंट है वो कहते हैं जी कि वो कॉज कर सकता है वैसे सार्स कोविड 2 के केसेस, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हैं फैल रहे हैं दुनिया में, खासतौर पे उन मुल्कों में जहां पे कि विंटर सीजन है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा खतरा ऐसा नहीं है इसका कि हेल्थ सिस्टम जो हैं जैसे कोविड 19 आया था तो बहुत ओवरबर्डन हो गए थे तो वैसे हो जाएंगी और प्रॉब्लम्स आएंगी। चाइना के अंदर आज 6.2 मैग्नीट्यूड का जी आया जलजला, और इसने मचाई काफी तबाही माउंटेनस प्रोविंस ऑफ गैंसू जो है वो वहां पे, और उसका जो नेबरिंग प्लेस है गिंगकाय उसके अंदर तकरीबन अभी तक जो न्यूज आई है 150 के करीब लोगों की डेथ्स हुई हैं, 700 के करीब जो है लोग इंजर्ड हुए हैं, हजारों लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है वहां से। ये जो है चाइना का पूरेस्ट एरियाज हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो दिखाया जा रहा था उसमें दिखाया जा रहा था कि घर गिरे हुए हैं, विलेजेस पूरे के पूरे जो है इस अर्थक्वेक ने रिप कर दिया है, और स्ट्रक्चर जो हैं वो गिरी हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो देखे जा रहे हैं अपने घरों के बाहर खड़े हुए, और चूंकि सर्दी जो है वो -13 डिग्रीज है वहां पे, तो लोगों ने इम्प्रूवाइज्ड फायर्स लगाए हुए हैं और उनके आसपास बैठे हुए हैं। तकरीबन 5,000 के करीब बिल्डिंग्स जो हैं वो बुरी तरह से भी डैमेज्ड हुई हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट जो है तैयब अर्दोगान साहब, वो आज हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन, उनके साथ मुलाकातें करने के लिए बुडापेस्ट में पहुंचे हुए हैं। और अर्दोगान साहब का ये दूसरा विजिट है हंगरी का इन 4 मंथ्स। ये दो नेटो कंट्रीज जो हैं, अभी तक इन्होंने स्वीडन का जो नेटो के अंदर इंक्लूजन था उसको रेटिफाई नहीं किया है। अर्दोगान साहब ने कहा है कि स्वीडन जो है, मैंने तो कहा था अपनी कांग्रेस को इसको पास करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि अंकरा के बहुत सारे इनके साथ मसले हैं कि ये जो रेबल्स हैं उनको, जो टर्की के खिलाफ काम करते हैं उनको ये करते हैं शेल्टर देते हैं। हालांकि स्वीडन ने कहा था कि हमने उसके ऊपर काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑर्बन साहब हैं वो भी स्वीडन का नेटो के अंदर मेंबरशिप को नहीं कर रहे हैं, और बल्कि वो कहते हैं कि जो स्टॉकहोम में लोग बैठे हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो बहुत ही हॉस्टाइल हैं अगेंस्ट हंगरी। और सितंबर में अभी इन्होंने कहा था कि इसका बिड टू नेटो जो है वो कोई इतना अर्जेंट मसला नहीं है, दुनिया में और बहुत सारे अर्जेंट मसले हैं। बहरहाल आज जब दोनों की मुलाकातें हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अपनी जो है ट्रेड के ऊपर। इस वक्त जो दोनों के बीच में ट्रेड है वो 4 बिलियन है, वो इसको 6 बिलियन तक बढ़ाना चाहते हैं। और आज रिपोर्टर्स के साथ जब बात की और उन्होंने पूछा कि भाई आप स्वीडन को पार्ट ऑफ नेटो बनाने के लिए जो है राजीनामा करेंगे, तो दोनों लीडर्स ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। खासतौर पर तुर्की से पूछा गया कि जिसे जब पूछा जाता है तो तुर्की के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कहते हैं कि स्वीडन एक तो हेडेक्स देता है, और दूसरा ये है कि जिस वक्त तक यूएस कांग्रेस अप्रूव नहीं करेगी हमारे लिए F-16 के फाइटर जेट्स, उस वक्त तक हम भी अपना गो अहेड इसके लिए नहीं देंगे। तो ये जो दोनों कंट्रीज हैं, ये इनके रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और फिर 100 ईयर्स हो गए हैं इनके बीच में डिप्लोमेटिक टाइज को, तो उन्हीं को असल में ये सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और डिफेंस और एनर्जी में टाइज बढ़ाना चाहते हैं, और इनके बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर एक जैसे व्यूज हैं, तो इसीलिए अर्दोगान साहब जो है आज इधर पहुंचे हैं और वो बढ़ा रहे हैं अब ताल्लुकात जो है। यूएस जो है उसने अनाउंस किया है जी कि एक मल्टी डायमेंशनल टास्क फोर्स बनाई जाएगी टू फाइट अगेंस्ट हूथीज इन रेड सी, क्योंकि यमन के हूथीज जो हैं ये जो रेड सी से गुजर रहे हैं, शिप्स उनके ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन जो थे वो इसराइल के अंदर थे, और उन्होंने कहा एक तो ये कि इसराइल को कि हम आपके पीछे खड़े हुए हैं, और जब उनसे कहा गया कि भई आप जो हैं ये क्यों इनको ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि बढ़ावा नहीं है, लेकिन हमको जो है हम कॉन्स्टेंटली शील्ड करेंगे इसराइल को अगेंस्ट ये जो सारे लोग कह रहे हैं सीज फायर, लेकिन दे हैव द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स। और जाहिर है कि आपको हमने बताया था पहले भी कि यूएस ने बहुत ज्यादा अपनी एड बढ़ा दी है इनको। आज ये जो मल्टी नेशनल फोर्स बनाने की बात है उसके ऊपर ऑस्टिन साहब ने कहा कि इसके अंदर यूके, कनाडा, फ्रांस, इटली, सेशल्स जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, तो 10 नेशन मल्टी डायमेंशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव हम ले रहे हैं। आपको हमने कल बताया था कि यूएस यूके ने कहा था कि उन्होंने डिस्ट्रॉयर्स अपने भेजे थे टू शूट डाउन 15 ड्रोन्स ऑफ हूतीज जो कि इनके वेसल्स के ऊपर रेड सी में अटैक कर रहे थे। हूतीज ने कहा है कि जिस वक्त तक इसराइल बैड जो है वो करता रहेगा, अटैक्स करता रहेगा पैलेस्टीनियंस के ऊपर, गाजा के ऊपर, वो भी इन सब के जो शिप्स रेड सी में से गुजरते हैं जो कि बड़ा मेजर ट्रेड रूट है उसके ऊपर करते रहेंगे। ऑस्टिन साहब ने कहा कि इजिप्ट, जॉर्डन भी इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि ये जो नॉन स्टेट एक्टर, ये जो हूथीज हैं, इनके खिलाफ जो प्रिंसिपल स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है वो चलाया जा सके। आज जो है इजरायली फोर्सेस ने और भी कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं गाजा के अंदर उनके ऊपर अटैक किया, जिससे कि अब जो डेथ टोल पैलेस्टीनियंस की है 20,000 को टच कर रही है, और तकरीबन 1.9 मिलियन पैलेस्टीनियंस डिस्प्लेस्ड हैं, और नॉर्दर्न गाजा जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और डिमोलिश कर दिया गया है। और जाहिर है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन जो हैं वो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका आपके पीछे खड़ा हुआ है, तो बेशक इंटरनेशनल कॉल्स फॉर सीज फायर है, लेकिन ये बिल्कुल जो है इसराइल उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। ये जो अटैक्स कर रहे हैं इसराइल की मिलिट्री, इसको वन ऑफ द 21st सेंचुरीज डेडलीएस्ट मिलिट्री कैंपेन्स का नाम दिया गया है। और इसराइल ने इससे पहले जो है अर्बन जबलिया का जो रेफ्यूजी कैंप था उसके अंदर सैकड़ों लोगों को मारा, फिर अल अहली जो हॉस्पिटल हॉस्पिटल इन गाजा सिटी में उसके ऊपर मारा। अल आली हॉस्पिटल जो है उसको एक चर्च ऑपरेट करता है और चर्च ने इसकी आज बहुत ज्यादा कॉन्डेमनेशन की है क्योंकि सैकड़ों ही पैलेस्टीनियंस इसके अंदर डेथ हुई है उनकी भी। डॉन बाइंडर जो कि पास्टर है एट सेंट जॉर्ज एंजलिकन कैथीड्रल जो कि इस हॉस्पिटल को चलाते हैं, उनका कहना है कि इन्होंने इतनी ज्यादा बॉम्बिंग की है, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन आ गया उस हॉस्पिटल के अंदर कि अब वहां पे ना तो कोई डॉक्टर्स हैं ना नर्सेज हैं, टोटल दो डॉक्टर्स हैं, चार नर्सें हैं और दो जेनेटर हैं और सैकड़ों की तादाद में जो इंजर्ड आ रहे हैं उनको सिर्फ देखने के लिए ये इतने लोग हैं। इसके अलावा कोई वहां पे पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फ्रांस, यूके और जर्मनी जो कि इसराइल के बहुत ही क्लोज एलाय समझे जाते हैं, उन्होंने भी कहा है कि सीज फायर करना चाहिए, लेकिन इसराइल के पीछे चूंकि अब खड़ा हुआ है अमेरिका तो वो किसी सूरत भी जो है इसको लड़ाई को बंद करना नहीं चाहते हैं। आज जो अफगान गवर्नमेंट है उसने यूनाइटेड नेशंस को कहा कि भई हमको एक सीट दें आप यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन जो यूएन का पैनल है उन्होंने डिसअप्रूव किया इनका एग्रेडिटेशन, इनके जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी, और ये थर्ड टाइम है कि 9 मेंबर यूएन क्रेडेंशियल कमेटी जो है उन्होंने इंटरिम अफगान गवर्नमेंट की इस रिक्वेस्ट को जो है वो रिजेक्ट किया है। अफगानिस्तान में इंटरिम जो तालिबान गवर्नमेंट है उन्होंने रूल लिया था अगस्त 2021 में जब यूएस फोर्सेस जो थी यहां पे जा रही थी और उन्होंने बहुत दफा रिक्वेस्ट की है यूएन को इनके यूएन का जो चेंबर है उसके अंदर, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के खासतौर पे जो 3 परमानेंट मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग रशिया चाइना एंड यूएस वो इनको बिल्कुल वापस नहीं लाना चाहते हैं एंड अदर्स आल्सो, क्योंकि वो कहते हैं कि ना तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो आपके कमिटमेंट्स हैं उनसे वो आप फुलफिल कर रहे हैं, ना वुमेन राइट्स दे रहे हैं और ना ही आप अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहे हैं। तो ये जाहिर है कि आज फिर से एक बहुत बड़ा सेटबैक था इनके लिए। और इन्होंने जो नासिर अहमद फेक जिसको कि अपॉइंट किया था गनी एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो ही अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा यूनाइटेड नेशंस में, उसको ये चेंज नहीं कर सकेंगे। तो ये आज जो है उस पे इन्होंने काफी जनाब अफसोस का इजहार किया है। एंड जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी। राजा बादशाह का आपको पता ही है कि वो कहते हैं कि जी अगर आपके पास दो गाड़ियां और एक घर है तो आप $1775 बचा सकते हैं। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनको कॉल कर सकते हैं 6472903773।
और साहब दो डेंटिस्ट का बताऊंगा आपको, डॉक्टर मुजीब काजी हमारे और आपके डेंटिस्ट 39 क्वीन स्ट्रीट ब्रैम्पटन क्वींस एंड रदरफोर्ड के कॉर्नर पर, और दूसरा इनका है साहब क्राइसलर एंड विलियम्स पार्कवे के कॉर्नर पर। डॉक्टर मुजीब काजी हमारे और आपके डेंटिस्ट 9054578661 इनका फोन नंबर है। और अगर आप ईस्ट एंड में हैं तो डॉक्टर पद्माजा रानी हमारी और आपकी डेंटिस्ट 3410 Shepherd Avenue राइट एट द कॉर्नर ऑफ शेपर्ड एंड वार्डन। डॉक्टर पद्माजा हमारी और आपकी डेंटिस्ट 4162997466 इनका फोन नंबर है।
हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के जो लीडर हैं उस्मान डार साहब, उनकी आज वालदा साहिबा ने डायरेक्टली निशाने जो हैं वो साधे हैं पीएमएलएन के जो लीडर हैं ख्वाजा आसिफ की तरफ, और उन्होंने कहा जी कि जब से मैंने ये कहा था नो मैटर व्हाट मैं इस दफा जो है इलेक्शंस के अंदर खुद पार्टिसिपेट करूंगी, उसके बाद एक दफा पहले मेरे पे अटैक करवाया गया था और अब दूसरी दफा ख्वाजा आसिफ ने मेरे घर के ऊपर अटैक कराया, मैं अपने घर में सो रही थी और इन्होंने अपने बंदे भेजे, उन्होंने मेरा दरवाजा तोड़ा, मेरे घर के अंदर दाखिल हुए, मेरी बूढ़ी औरत की कमीज तक पाड़ दी और मुझे बालों से पकड़ के घसीटा, और ये 20 लोग थे जो कि मेरे घर में आए और मुझे मैन हैंडल किया, और अगर आप मुझे जो है जेल में भी डाल देंगे तो भी मैं इलेक्शंस जो है आप लोगों के खिलाफ लड़ूंगी पीटीआई के टिकट के ऊपर। जो ख्वाजा आसिफ है उन्होंने इन तमाम एलिगेशंस के बारे में डिनाई किया है और उन्होंने कहा कि इस तरह की वेंजफुल पॉलिटिक्स जो है वो मैं नहीं करता हूं, लेकिन उस्मान डार की वालदा जो उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट में अपील की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को कि इस इंसिडेंट का फौरन नोटिस लें। तो अब देखें जी क्या कुछ हो रहा है बूढ़ी औरतों के साथ। पता नहीं हमारे मुल्क में वैसे इस्लाम के बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं हम पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आज तक कितनी भी गंदी पॉलिटिक्स होती थी बेटियों को और औरतों को कभी कोई ड्रैग नहीं करता था। जो कुछ अब लोएस्ट लेवल पे जो गिर चुकी है, ये जो कोई भी अलीट है पाकिस्तान की जो रन कर रही है अफेयर्स, इसमें इट इज एब्सोल्यूटली शेमफुल। आप लोगों के लिए अल्लामा इकबाल जो है ये शेर बोल के गए थे, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। बिल्कुल आज आपको देख के यहूदी भी शर्माते होंगे जितनी गंदी आपकी हरकतें हैं। औरतों को आपने जेलों में डाला हुआ है, उनके साथ आप गंदी हरकतें कर रहे हैं, उनके कपड़े तक एक बूढ़ी औरत के पाड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके बालों से उनको खींच रहे हैं। सिविलाइज सोसाइटी का तो आप छोड़ ही दें, आप जो कहते हैं हम बड़े धर्म के ठेकेदार हैं, मुसलमान हैं, मुसलमानों का ये रवैया होना चाहिए औरतों के साथ? शेम ऑन ऑल ऑफ यू हूएवर इज रनिंग द अफेयर्स देयर इन पाकिस्तान. आज जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर काकड़ के जो एडवाइजर हैं ऑन एस्टैब्लिशमेंट अहद चीमा साहब, उनको उनकी पोस्ट से निकाला है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो कह रही थी कि ये फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जो हैं इनके अंडर नहीं हो सकेंगे जो कि February 8, 2024 को हो रहे हैं. एडवोकेट सैयद अजीजुद्दीन काका खेल जो हैं उन्होंने अपना पिटीशन September 29 को चीमा और फवाद हसन फवाद के अगेंस्ट डाला था, और उन्होंने कहा था कि इन दोनों के बड़े क्लोज टाइज हैं शहबाज शरीफ के साथ, तो एज अ रिजल्ट ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे. आज इसकी हियरिंग सुनते हुए ईसीपी ने कहा कि इनको हटाया जा रहा है, और जो फवाद हसन फवाद हैं उनके खिलाफ हियरिंग जो है अब December 21 को होल्ड की जाएगी. सनम जावेद खान जो कि जेल में डाली हुई है लड़की, जो कि एक टिकटॉकर थी और जो सिर्फ थोड़ा सा पसंद करती थी इमरान खान साहब को, वो दिन और आज का दिन 9 मई से उसको जेल में डाला हुआ है. उसने आज अनाउंस किया है अपने वालिद साहब के थ्रू, जो कि उनके वालिद साहब ने मीडिया को बताया कि वो February 8 के जो अपने इलेक्शंस हैं, पहले तो वो PTI के लिए बोलती थी लेकिन अब शी हैज बिकम अ PTI एक्टिविस्ट एंड शी विल कंटेस्ट ऑन PTI टिकट. और उन्होंने कहा जी मैं एग्जैक्टली उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लाहौर PP 150 से लड़ूंगी जहां से कि मरियम नवाज जो है वो इलेक्शन लड़ने का, जिसका कि कुछ दिन पहले आया था. वैसे तो मरियम नवाज ने अभी तक कहा नहीं है कि क्या एग्जैक्टली वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रन करेंगी, लेकिन वैसे ये ख्याल था कि मरियम नवाज जो है वो करेंगी, तो उन्होंने भी अनाउंस किया है कि जहां से वो रन कर रही हैं इलेक्शंस मैं भी वहां से करूंगी. और ये जो हैं सनम जावेद, ये सिर्फ टिकटॉक बना रही थी May 9 को, जबकि इनके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए गए थे कि इन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी जो कॉर्प्स कमांडर का घर था लाहौर में, उसके अंदर ये भी शामिल थी, और जो कैंट एरिया के अंदर जो पुलिस की व्हीकल्स थी उनको आग लगाने की कोशिश की थी. हालांकि इनके वालिद साहब, इनके हस्बैंड, इनके जो वीडियो की जो सारी वो थी एविडेंस थी वो जब कोर्ट में दी गई थी तो पता चला था कि ये उस वक्त जो है माल रोड पे थी, ये उन इलाकों में थी भी नहीं, लेकिन फिर भी जी इनको उस दिन से जेल में डाला हुआ है. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने आज फिर से जो है PTI का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था उसको एक दफा फिर से मानने से इनकार कर दिया था, और आज जो हियरिंग हो रही थी उसके जो उन्होंने वर्डिक्ट है उसको रिजर्व किया है आने वाले दिनों के लिए, जिसको कि PTI ने बहुत ही शेमफुल कहा है. 5-member ECB बेंच लेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने आज ये हियरिंग इस्लामाबाद में की थी, और PTI को इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि जो इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए हैं उसको नहीं मानते. इसके बाद PTI ने अर्लियर दिस मंथ फिर से एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए थे, और जो पार्टी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब उनको रिप्लेस किया था विद बैरिस्टर गौहर खान, और इसके बावजूद ECP ने ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मानने से इनकार किया, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं थे, और अगर आपने 20 दिन के अंदर फिर से फ्रेश इलेक्शंस ना कराए तो आपका बैट का जो सिंबल है आपसे जाएगा. और इनके असल में ये ECP इसलिए ये हियरिंग डाल के बैठी थी क्योंकि PTI के जो फाउंडिंग मेंबर थे अकबर बाबर, उन्होंने कहा था कि ये रिग्ड और फ्रॉडुलेंट इंट्रा पार्टी पोल्स थे. PTI के काउंसिल बैरिस्टर अली जफर ने बहुत ज्यादा अफसोस करते हुए कहा कि ECP जो है उन्होंने इमरान खान के सिग्नेचर्स जो हुए थे फॉर्म 65 पे उसकी बेसिस पे कहा है कि ये तुम्हारे सारे पार्टी इलेक्शन जो हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं है. और वो उन्होंने कहा जी कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि पार्टी का चेयरमैन जो होता है वो ही साइन करता है इन फॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी कि कोई भी और पार्टी है, PPP है या PMLN है, उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं या चेयरमैन होते हैं वो फॉर्म्स के ऊपर साइन करते हैं चाहे उनकी जगह पे. तो ये तो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इसके अंदर तो चेयरमैन इमरान खान हैं भी नहीं, तो फिर इसके ऊपर क्या एतराज है. बहरहाल जी उन्होंने एतराज करना है तो वो जाहिर है करेंगे. और मैं जरा इलेक्शन कमिश्नर से पूछना चाहती हूँ, जरा सिकंदर साहब से. सिकंदर साहब आप ये बताएं कि आप ये PTI वालों को कह रहे हैं कि तुम्हारे ट्रांसपेरेंट नहीं है, हालांकि अब तो वो चेयरमैन जो है इमरान खान है भी नहीं है जी, बैरिस्टर गौर है. आप मुझे बताएं PPP के अंदर चेयरमैन कौन है, हैं जी, PMLN के अंदर चेयरमैन कौन है? ये दो पार्टियां जो हैं ये सोच सकती हैं कि ये बिलावल या जरदारी या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या मरियम शरीफ जो हैं इनसे हटके किसी बंदे को अपना पार्टी प्रेसिडेंट बनाए? तो मतलब शेम ऑन यू पीपल, यू पीपल हैव मेड अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री एज वेल. शेम ऑन यू. याद करेगी, अगर तो ये मुल्क आपने रहने दिया तो हिस्ट्री आपको याद करेगी और बहुत ही गंदे लफ्जों में याद करेगी जो आप हरकतें कर रहे हैं. शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं जी, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने आज कहा है जी कि मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है नवाज शरीफ साहब के साथ और मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि नवाज शरीफ साहब भी मेरे साथ कोई जो है ताल्लुक रखेंगे। आज ये मीडिया के साथ बात कर रहे थे आउटसाइड अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इन इस्लामाबाद, जहां पर इनके ऊपर केस चलाया जा रहा है LNG का, और उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं पहले भी ये बहुत दफा कह चुका हूं, सैकड़ों दफा, और अब भी फिर मैं कह रहा हूं कि अपकमिंग इलेक्शंस जो हैं 8 February को जो होने वाले हैं उसमें मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, और मैंने PMLN इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं स्पेस क्रिएट करना चाहता था मरियम नवाज के लिए एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑर्गेनाइजर, और मेरे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है पार्टी लीडरशिप के साथ, तो लेकिन मैं पॉलिटिक्स में चूंकि हिस्सा नहीं ले रहा हूं, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स मैंने छोड़ दी है, तो इसलिए मैं साइड पर बैठा हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इस वक्त मुझे बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सब पार्टीज के लिए नहीं लग रहा है, जाहिर है कि उनका इशारा PTI की तरफ था कि उसको नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा जी कि यह एग्जैक्टली वही सिनेरियो है कि जब 2018 के इलेक्शंस हुए थे और PTI जीती थी तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया था, जिसके के ऊपर PMLN, PPP और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत शोर मचाया था और कहा था कि ये रिग्ड है। तो अब भी इसी वक्त भी एग्जैक्टली वही चीज आ रही है, और वो कहते हैं जी कि लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हर कोई चूंकि कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी, इलेक्शन कमीशन भी, सुप्रीम कोर्ट भी, तो मुझे लगता है कि इलेक्शंस जो है अपने स्केड्यूल्ड टाइम पे होंगे। ठीक है जी फैन, हाँ जी, वो कह रहे हैं मैं तुमसे नहीं बोल रहा, वो कह रहे हैं मैं भी तुमसे नहीं बोल रहा। ठीक है जी, ऐसा है। और जनाब हिंदुस्तान के अंदर जो है वो भी अब चूंकि इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 में, तो वहां पे भी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा गर्मा गई हैं, खासतौर पे जो हमने आपको बताया था कि 90 से ऊपर लोग जो हैं उनको लोक और राज्यसभा से निकाला गया है, और सिर्फ उन्होंने इसलिए पूछा था कि जी ये ब्रीच जो हुआ है यहां पे, लोग छलांग मार के पब्लिक गैलरी से आए और उन्होंने जो है स्मोक कैनिस्टर्स कैसे खोले, उसके ऊपर उनको साइडलाइन किया। तो आज ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक जो है वो आज दिल्ली के अंदर जमा थे और आज उनकी ये चौथी मीटिंग जो है वो चल रही थी, और आपको पता ही है कि 28 ये पार्टीज का गठबंधन है जो कहते हैं कि अब हम मिलके और सीट एडजस्टमेंट्स करके आगे चलेंगे ताकि बीजेपी फिर से जीत के ना आ सके, और जो इसके ऊपर जो सीट एडजस्टमेंट्स हैं इनके ऊपर क्लैरिफिकेशन थोड़े दिनों में आएगी। RJD के जो MP हैं मनोज झा बिहार से, उन्होंने कहा इन तमाम इश्यूज के ऊपर कि हम कैसे यूनाइटेड चल सकते हैं और कैसे आगे चीजों को बढ़ा सकते हैं, इन तमाम की डिटेल्स कुछ दिनों में आएंगी, और अगर हमको जो है मोदी जी ने या होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जवाब ना दिया कि ये सिक्योरिटी ब्रीच क्या हुआ, तो फिर हम जो है मोर्चे निकालेंगे सारे कंट्री के अंदर, और उसके बारे में भी जल्द बताया जाएगा। CPI के जनरल सेक्रेटरी DRaja जो है उन्होंने कहा जी कि तमाम इश्यूज इंक्लूडिंग सीट शेयरिंग के ऊपर जो है बातचीत चल रही है, और हमें लगता है कि ये बात जितनी जल्दी हो उतना ही जल्दी हमारी इस गठबंधन के लिए अच्छा है। ये मीटिंग जो है उसके अंदर कांग्रेस के भी बहुत सारे ऑफिशियल्स थे, जैसे कि सोनिया गांधी थी और राहुल गांधी थे, लेकिन यहां पे खिताब किया कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मलिक अर्जुन खड़गे ने, और उन्होंने कहा जी कि हम ये जो 141 अब MPs जो हैं जिनको कि अब ऑल टुगेदर पार्लियामेंट से निकाला गया, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों को निकाला है, कल तक जो थे 90 के करीब लोग थे, 91 के, आज जो है 141 है। वो कहते हैं जी इन तमाम MPs को जिनको निकाला जा रहा है सिक्योरिटी ब्रीच का, जिन्होंने क्वेश्चन किया था पार्लियामेंट में, तो हम उसको कंडेम करते हैं, ये अनडेमोक्रेटिक है, और हम आखिरी वक्त तक फाइट करते रहेंगे, और अगर हमारी बात का जवाब ना दिया गया तो एग्जैक्टली December 22 को हम नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे। उन्होंने DMDMK के जो वाइको हैं लीडर, उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि खड़गे साहब आप जो है इंडिया अलायंस का प्राइम मिनिस्टीरियल फेस होना चाहिए, और ये प्रपोजल जो था TMC की जो हमारी दीदी है TMC की चीफ ममता बैनर्जी, ये उसने दिया था, अलबत्ता खड़गे साहब ने इसको रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं अभी पहले जो है इलेक्शंस होने दो, डिसाइड होने दो कौन जीत रहा है, अगर तो इंडिया अलायंस जीतेगी उस वक्त फिर हम डिसाइड करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसका चेहरा कैसा होना चाहिए। तो ये जनाब चीजें अब जो है अब तेज हो गई है, जरा इलेक्शंस आने वाले हैं। और जनाब और ज्यादा जो इंडियन बिजनेसमैन है उनके ऊपर अब दुनिया जो है अब उंगली उठाने लगी है। वर्ल्ड वाइड फ्रीज किए गए हैं एसेट्स ऑफ इंडियन बिजनेसमैन प्रतीक गुप्ता, और इनके पहले भी किए गए थे, आज इनका वो चल रहा था, इनके ऊपर वो चल आमिर ये आप दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आप चिंतन अंजारिया, हाँ ये हैं, यस दिस वन इज जो हमारा टीवी देख रहे हैं प्रतीक गुप्ता ये हैं, और लंदन के हाईकोर्ट जज जो है उन्होंने ऑर्डर दिया इन फेवर ऑफ कमोडिटी ट्रेडर ट्रैफिगुरा जिन्होंने कहा था कि इन्होंने हमें, ये जो इंडियन बिजनेसमैन हैं गुप्ता साहब, 600 मिलियन का इन्होंने हमको निकल फ्रॉड हमारे साथ किया है और ये लीगल बैटल चल रही है। गुप्ता साहब ने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस और ईमेल्स कोर्ट में दिखाए। गुप्ता साहब दुबई में बाय द वे रहते हैं और उन्होंने कहा जी कि ये सिंगापुर बेस्ड जो कंपनी है उसने इनको कहा था फ्रॉड करने के लिए। ट्रैफिगुरा जो है उन्होंने एक्यूज किया था गुप्ता को कि इसने मास्टरमाइंड किया है फ्रॉड और थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स जो हैं उसमें बिल्कुल वर्थलेस मटेरियल्स ये डाल के शिप कर रहा था और ये वैल्यूएबल मटीरियल यानी कि जो निकल था ये उसके अंदर जो था वो नहीं था, ताकि ये अपना जो है रेवेन्यू हमसे पैसे लेता रहे, अपने रेवेन्यूज को बूस्ट करता रहे, क्रेडिट लाइन बनाए और प्रॉफिट्स लेता रहे। और ये केस उन्होंने लंडन की कोर्ट में डाला था जो आज उनके हक में गया है। इसके अलावा ओनर ऑफ मार्केटिंग कंपनी लोकेटेड इन इंडिया, उनका भी रोल आज बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो आया है, जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में फ्रॉड और रिसीविंग इलीगल किकबैक्स, ऑफरिंग इलीगल किकबैक्स, उस सिलसिले में आया है। इनका नाम है चेतन अंजारिया और ये जो है यूएस कोर्ट के में जो विकास खन्ना जो अटॉर्नी थे उन्होंने कहा जी कि इन्होंने बहुत ही चेतन अंजारिया ने गलत काम किए और जो ये मेडिकेयर कंपनी थी इसको 11.5 मिलियन डॉलर्स का जो है नुकसान दिया। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इन्होंने वैसे गिल्टी प्लीड किया था अक्टूबर 31 को इस साल में और ये जो जज थे माइकल फर्बिराज इन न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट, फिर उन्होंने इनको चार्ज किया था फॉर कॉन्स्पिरेसी एंड वायलेटिंग फेडरल एंटी किकबैक स्टैट्यूट और कॉन्स्पिरेसी टू कमिट हेल्थ केयर फ्रॉड। ये सारा फ्रॉड इन्होंने किया था फरवरी 2017 से मई 2022 के बीच में और उन्होंने फ्रॉडुलेंट जो क्लेम्स थे वो मेडिकल केयर को दिए थे और 11.5 मिलियन डॉलर्स जो हैं उनसे फिर कॉज कलेक्ट किए थे, जिससे कि जाहिर है उस कंपनी को बहुत नुकसान हुआ और इन्होंने ऑर्डर्स डाले थे झूठे ऑर्थोडॉटिक ब्रेसेस और CGX टेस्ट के लिए। तो ये जनाब अब और दो इंडियन बिजनेसमैन जो हैं दुनिया के सेक्टर पे आ रहे हैं। पहले आपको पता ही है अदानी साहब के खिलाफ हिंडनबर्ग ने बहुत बड़ा जो है वो खुलासा बनाया था और अब ये और भी आ रहे हैं, और भी आएंगे पैन, और भी आएंगे एडा पैहा तुसी माजद भाई इतने लिफाफे लेते हैं इतने पैहे नहीं कमा सके हैं जी, तो फिर ये कैसे इतने पैहे कमा रहे हैं, व्हाट इज दिस माजद भाई। और जनाब हम सबके बड़े बिलवड जो हैं ब्रैड पिट साहब, ऑस्कर विनिंग एक्टर हैं, ही टर्न 60 टुडे। डज ही लुक 60? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। और बड़ा लेकर इन्होंने लो की किस्म का, वो कहते हैं जी बर्थडे वीक मैं बनाऊंगा और बड़ा लेड बैक मेरे प्लान्स हैं और अपनी जो इनकी गर्लफ्रेंड है ज्वेलरी डिजाइनर एनेस डी रेमोन उनके साथ और फ्रेंड्स के साथ ये टाइम गुजारेंगे और उसके बाद जो है इनका ये जो साल अब आने वाला है ये बड़ा ही हेक्टिक रहने वाला है। तो वो कहते हैं जी कि मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूं इससे पहले कि मैं ये जो पहली फिल्म है रेस ट्रैक्स के ऊपर डेटोना इंटरनेशनल स्पीडवे की जो Formula 1 के ऊपर जो मूवी है उसके ऊपर मैं काम शुरू करूंगा। उसके बाद ये ही विल री यूनाइट विद जॉर्ज क्लूनी ऑन एप्पल टीवी प्लस फिल्म वुल्फ्स जो आ रही है और जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि बिड और रेमोन जो हैं उनकी पहली जो उनको साथ में आउट देखा गया था साथ साथ पब्लिक में नवंबर 2022 में बोनो के कॉन्सर्ट पे लॉस एंजलस में देखा गया था और उसके बाद से इनके प्यार में और बढ़ावा आया। और वो कहते हैं जी कि ब्रैड पिट का डिवोर्स के जो हुई थी इनकी एंजेलिना जोली से उसके बाद ये पहला इनका प्रॉपर रिलेशनशिप है और वो उसमें काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज लोगों ने एलेक बॉल्डविन को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा क्योंकि वहां पे जो कुछ पैलेस्टीनियंस के लिए प्रोटेस्ट निकली हुई थी और वहां पे एंटी इजराइल प्रोटेस्ट चल रहा था और लोग जो थे वहां पे पेन स्टेशन और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पास खड़े हुए थे और उन्होंने कहा बॉल्डविन को कि यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, योर करियर इज टैंकिंग, स्टिल यू आर स्पीकिंग फॉर इजराइल। ये यहां से पास कर रहे थे वेस्ट 29th स्ट्रीट से जब प्रोटेस्टर्स ने इनको एक्यूज किया फॉर सपोर्टिंग इजराइल। NYPD के ऑफिशियल्स फिर ऑफिसर्स आए और उन्होंने इनकी जान बड़ी मुश्किलों से बचाई और वहां से लेके निकले। लोगों ने इनसे पूछा कि क्या तुम इजराइल को कंडेम करते हो कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं मैं सपोर्ट करता हूं पीस फॉर गाजा, तो और तुम लोग मेरे से सही सवाल करो, सही सवाल करोगे तो मैं सही जवाब दूंगा, तुम लोग गलत सवाल कर रहे हो। बहरहाल जी जो सोर्सेज हैं उन्होंने बड़ा, जो इनके इनर सोर्स के लोग हैं उन्होंने बड़ा बुरा मनाया, उन्होंने कहा कि इसका तो ये तो एक वॉलंटियर टीच एक्टिंग क्लास टीच करने के लिए जा रहा था और इसका तो कुछ प्रोटेस्ट के साथ लेना देना भी नहीं था, लेकिन प्रोटेस्टर्स जो थे बड़े अग्रेसिव थे इसके रस्ते में आए और ये बिल्कुल किसी तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन पुलिस ने इसकी जान छुड़ाई और ये फिर अंदर गया जहां पे इसको लेक्चर देना था। और जनाब बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़े बड़े नेम्स अब 2024 में वापस आते आपको नजर आएंगे, जो कि बहुत अरसे से नहीं थे। जैसे कि एक एक्टर इमरान खान, जो कि जिनका के ताल्लुक आमिर खान के साथ भी है, वो उनका बहुत अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे, वो अब वापस आ सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने बताया कि वो अब वापस आएंगे। इसके अलावा जीनत अमान साहिबा जो हैं वो भी वापस जो हैं वो आ सकती हैं और नजर आएंगी अब बन टिक्की के अंदर। इसके अंदर शुबाना आजमी और अभय देओल भी नजर आएंगे और इस फिल्म को जो बहुत ही बड़े फैशन डिजाइनर इंडिया के मनीष मल्होत्रा वो को प्रोड्यूस कर रहे हैं। 11 इयर्स के बाद फरदीन खान, फिरोज खान के बेटे, वो भी वापस आएंगे और ये फिल्म होगी विस्फोट। और 2010 में ये आखिरी बार दूल्हा मिल गया में देखे गए थे सुष्मिता सेन के साथ। इसके अलावा जायद खान भी जो है वो नजर आएंगे, जो कि बिल्कुल स्क्रीन से गायब हो गए थे आफ्टर 2015। तो ये सारे एक्टर्स जो हैं वापस आ रहे हैं। एंड जनाब पाकिस्तान जो विमेन क्रिकेटर्स हैं उन्होंने जनाब बड़े जबरदस्त जो हैं झंडे गाड़े हैं और T20 अपना एक जीता था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अवे फ्रॉम होम और फिर उनका जो है शुरू हो गया था ODI मैचेस। दो पहले तो वो हार गई थी लेकिन तीसरा जो ODI एट हैगली ओवल जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने जीता है इन अ सुपर ओवर अवे फ्रॉम होम। और ये जो इनको टारगेट सुपर ओवर में दिया गया था 12 रन्स का, जो कि न्यूजीलैंड ने 3 रन से मिस किया। फातिमा सना जो है इस टीम को लीड कर रही हैं और ये जो है इनकी अब रैंकिंग भी इस जीत से ऊपर चली गई है ICC वुमेन्स चैंपियनशिप साइकिल रैंक में 16 पॉइंट्स इन 18 मैचेस। पाकिस्तान की ये दूसरा इनका विन था 17 मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड में। बिस्मा मारूफ जो है उन्होंने 68 of 86 रन्स बनाए एंड उन्होंने पार्टनरशिप की 101 रन्स की आलिया रियाज के साथ, जिन्होंने 44 रन्स बनाए ऑफ 84 बॉल्स। और इन दोनों का स्टैंड बड़ा क्रूशल था क्योंकि पाकिस्तान 37 पे 2 विकेट्स लूज कर चुका था इन 8th ओवर और इन्होंने फिर जो है दूसरी विकेट भी लूज कर दी इन ऑन 138 रन्स पे। फातिमा सना ने फिर 33 बनाए ऑफ 36 और नजीह आलवी ने 23 नॉट आउट ऑफ 26। तो सारी लड़कियां जबरदस्त खेली, नटालिया परवेज 26 for 23। न्यूजीलैंड ने कहा था कि हम पहले बैटिंग करेंगे और पाकिस्तान की जो बॉलर्स थी नशरा संधू और गुलाम फातिमा उन्होंने 2-2 विकेट्स ईच ली। पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज जो हैं उन्होंने 17 मेंबर स्क्वाड जो है फॉर अपकमिंग T20 सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड उसका आज ऐलान किया, जो कि जनवरी नेक्स्ट ईयर से शुरू हो रहा है। शाहीन शाह आफरीदी इसको फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर बाबर आजम इसको लीड करेंगे और इसके अंदर यंगस्टर्स अब्बास आफरीदी, साइम अयूब, हसीबुल्ला खान, साहिबजादा फरहान इनको इंक्लूड किया गया है। और बैटर्स में आजम खान, फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जो हैं वो रहेंगे।
आजम खान को लिया इन्होंने?
हाँ लिया आजम खान।
क्या बात है।
पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस के लिए उधर गई हुई है, विच इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 साइकिल दैट एंड्स ऑन जनवरी 7। और इसके ऊपर बात करते हुए वहाब रियाज ने कहा कि जी हमने खुशदिल खान, आसिफ अली, हैदर अली, शोएब मलिक, फहीम अशरफ को बहुत ज्यादा चांसेस दिए थे लेकिन वो अपना कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सके, इसलिए हमने उनको नहीं लिया। इसके अलावा मोहम्मद हैरिस को भी हमने रेस्ट किया, जिसके लिए आज इनको बहुत ज्यादा बैश किया गया PCB को कि क्यों मोहम्मद हैरिस को तुमने नहीं लिया। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट IPL इंडियन प्रीमियर लीग। इसका बहुत ही रंगारंग किस्म का जो इवेंट था वो दुबई में रहा और ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स मिशेल स्टार्क एंड पैट कमिंग्स टर्नड आउट टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स इन IPL हिस्ट्री। स्टार्क जो था उसने 8 साल पहले IPL खेला था लेकिन उसने कम बैक किया है और इसको KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि शाहरुख खान की है टीम है, उसने $2.98 million पे इसको खरीदा है और इसने सारे रिकॉर्ड्स जो हैं ब्रेक किए थे। और कमिंग्स जो था उसको इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने लिया था 2.47 मिलियन पे। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरन जो हैं वो जो थे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे एट 2.23 मिलियन लास्ट ईयर, जिसको कि खरीदा था पंजाब किंग्स ने। और इसके अलावा जो है इन दोनों को ये जो स्टार्क और कमिंग्स हैं, इन दोनों को ऑक्शन की जो इनकी बेस प्राइस थी जिससे शुरू किया गया था वो था $240,000 जो फिर राइज करके इतनी पहुंची। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डैरल मिशेल जो है थर्ड टॉप प्लेयर थे जिनको के बाय किया चेन्नई सुपर किंग ने फॉर 1.6 मिलियन US डॉलर्स। और जो वेस्ट इंडीज के स्टार हैं रोवमैन पावल वो गए राजस्थान रॉयल्स के लिए फॉर $890,000। ट्रेविस हेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया बॉट बाय सनराइजर्स हैदराबाद फॉर $818,000। साउथ अफ्रीकन पेसमैन जैरल कोटजी सोल्ड टू मुंबई इंडियंस फॉर $602,000। और एक्स ऑस्ट्रेलियन स्किपर स्टीव स्मिथ जो है बड़ी हैरत की बात है ही रिमेन्ड अनसोल्ड अलॉन्ग विद द विकेट कीपर जोश इंग्लिस। इसमें तकरीबन 300 प्लेयर्स थे जो के आए थे जिनको जिनकी के लिए बिड डाली गई थी आईपीएल के अंदर जो के अब 2024 में मार्च में शुरू होएगा। तो बड़ी ही जबरदस्त बिड्स जारी रही जनाब वहां पे।
They can afford it.
Any plan?
They can afford it.
बड़ा पैसा। सानू कितने चाहिए नौ जी? मिलियन डॉलर।
और उसके अलावा ये तो इंडिया की बात कर रहे हैं ना आप। जब मिलियंस की बात करनी है आपको तो शो है ओटानी जापानीज बेसबॉल प्लेयर लॉस एंजलिस ने दिया है साहब उसको 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट फॉर $760 मिलियन। $760 मिलियन का उसको हजारे मेरे मालिक
मैनू नहीं मिलियन डॉलर दे रहे।
और मजे की बात यह है कि उन्होंने जो साइन किया कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ही इज गोना प्ले फॉर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के लिए तो ही इज गोना ओनली टेक $2 मिलियन ए ईयर। इसने कहा कि मुझे सिर्फ $2 मिलियन ईयर दो बस, बाकी के जितने भी $760 मिलियन है मेरे वो मुझे जब 10 साल पूरे हो जाएं तो मेरे हाथ में पकड़ा दीजिएगा आप इन जापान। तो ही इज नॉट गोना पे एनी टैक्स हियर और जापान में तो वहां पर टैक्स नहीं होता तो पूरा $760 मिलियन
खरे
खरे वेरी स्मार्ट है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लोग कह रहे थे $2 मिलियन में ये कैसे जिंदगी गुजार सकता अपने साल के $2 मिलियन में हाउ कैन ही लिव नो ही कैंट लिव इन अमेरिका विद $2 मिलियन। मगर फिर पता चला कि उसके पास जो
एंडोर्समेंट
है दैट इक्वल्स $40 मिलियन। दैट वॉज लास्ट ईयर। दिस ईयर इज गोइंग टू मेक इवन
मोर।
सो $40 मिलियन लास्ट ईयर के $40 मिलियन प्लस दिस।
चलो बाया नसी जाने हैं। वो जो नहीं बनते बॉल बॉयज और बॉल गर्ल्स हम वो बॉले उठा उठा के देंगे बोलेंगे पैन सनू भी कुछ जो पाए
इनको। आई थिंक ही कैन लिव गुड लाइफ ऑफ $42 मिलियन। यू थिंक सो?
हाँ
$42 मिलियन में ही कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ।
वेरी 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 गुड लाइफ।
नो दैट्स ओके। $42 मिलियन
नथिंग है
पीनट्स। $42 मिलियन
सनू 1 मिलियन ही दे दो यार पायन बिचो कोई साड़ी भी किस्मत बदल जाए हमारा किसी को ख्याल नहीं है। व्हाट इज दिस
$760 मिलियन? ये तो क्रिकेटर्स क्या बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है। कंपेयर टू दैट ही मेक्स $70 मिलियन प्लस $40 मिलियन कितना हो गया?
ओ पैन मेरी गर्ल सुनो,
कैलकुलेटर लेके आओ। $70 मिलियन प्लस $40 मिलियन इज $110 मिलियन
बिलियन डॉलर्स।
$110 मिलियन $110 मिलियन इज गोना मेक अ ईयर। ऑन टॉप ऑफ दैट नॉट कंपेयरिंग लास्ट ईयर, इस साल इसको और भी ज्यादा क्योंकि ही इज वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड नाउ। पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो गया
क्यों, किस वजह से? क्यूट बहुत है, मोटा बहुत है।
नो ही प्लेज
जैपनीज है।
ही प्लेज गुड, ही इज अ पिचर जिसको आप बॉलर कहती है ना। ये बॉलर भी है और बैट्समैन भी है।
अच्छा बैट्समैन भी है वो। अच्छा, दोनों है। ऑलराउंडर है ये?
ऑलराउंडर है। तो
अच्छा 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 अच्छा
मैंने उनसे कहना है कि बेसबॉल में ऑलराउंडर है वो। हाँ। तो कहेंगे ऑलराउंडर वो क्या होगा
क्या ना लैक ऑफ एजुकेशन।
ये थी हमारी आज की न्यूज बखिया की न्यूज। इंशाल्लाह ताला कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आशा जी थैंक यू सो मच।
आई विल सी यू टुमारो
इंशाल्लाह। एंड बखिया की बातें इंशाल्लाह ताला कल।
वैसे कल बड़ी खतरनाक है डेट, मैं छुट्टी कर सकती हूँ।
अल्लाह हाफिज।
चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें।
Thank you.
देखा मुझे दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे से कुछ बात ना हो पाई है मैं इशारा भी अगर करता हूं इसमें हम दोनों की रुसवाई है इसमें हम दोनों की रुसवाई है दिल का आलम कुदरत की मेहरबानी है मुझ पे कुदरत की मेहरबानी है दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे एक चेहरे ने बात चेहरे ने बात प्यार से देखा मुझे दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे खाई है आई है तेरी उल्फत मेरी जाना वो रंग लाई है लाई है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है खाई है
चुनरिया तूने मेरे
दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, ओ जब प्यार किया तो डरना क्या। करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, तो जब प्यार किया तो डरना क्या। Yeah.